नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय ओलंपिक संघ ने आज विशेष आम बैठक के दौरान 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। टीम इंडिया के एक दिवसीय क्रिकेट प्रारूप के कप्तान रोहित शर्मा ताजा ICC एक दिवसीय रैंकिंग में एक पायदान के फायदे के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे, शुभमन गिल पहले स्थान पर बरकरार। भारत के कुलवीर सिंह ने बुडापेस्ट में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ की गैर ओलंपिक स्पर्धा में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा, और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 से 31 अगस्त के बीच पेरिस में आयोजित की जाएगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने आज विशेष आम बैठक के दौरान 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। आइए सुनते हैं इस पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट।
खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली प्रस्तुत की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से गेम्स के लिए मंजूरी दी, जिसने देश की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो खेलों का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। बोली के दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दौड़ में शामिल कनाडा के ओंटारियो प्रांत ने लागत से जुड़ी चिंताओं के कारण अपनी दावेदारी आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अधिकारी और खेल निदेशक डेरेन हॉल हाल ही में अहमदाबाद आए थे, जहां उन्होंने गुजरात के अधिकारियों के साथ जगह का निरीक्षण किया था। इस महीने के अंत में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के बड़े दल के आने की संभावना है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की आम सभा नवम्बर के अंतिम सप्ताह में ग्लासगो में मेजबान देश का फैसला करेगी। भारत ने 2010 में आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तब दिल्ली में खेलों का आयोजन किया गया था। उम्मीद है कि देश एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर विश्व में अपना परचम लहराएगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस पर अपनी प्रसन्नता कुछ यूं व्यक्त की।
Meeting is gone well and we have unanimously done the Commonwealth 2030 proposal, no, for to beat proposal. Because when you work together, then only you will get the result. So I am so happy today. Maybe we have a lot of facilities in most of the places. Ahmedabad it is there, Bhubaneswar it is there, and that we have yet decided actually. So that will be coming very soon.
शबाब, अगर हम देखें तो 2010 में भारत ने CWG की मेजबानी की थी, और एक बार फिर से 2030 में दोबारा हम इसकी मेजबानी करने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। क्या कुछ लगता है आपको, ग्लासगो में क्या फैसला आने वाला है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत को इसकी मेजबानी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से कनाडा ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए नाम अपना वापस लिया है
जी।
और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आप मोटेरा, जो कि अहमदाबाद में जहां पे सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पर कई मल्टीपल स्टेडियम्स बन रहे हैं, तो बुनियादी ढांचों का जिस तरह से काम अहमदाबाद में अभी पिछले कुछ महीनों से चल रहा है
जी।
उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत को अभी तो बिड भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारत को इसकी मेजबानी मिल रही है। और हम अपने श्रोताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि मल्टीपल स्पोर्ट्स के अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो ये चौथी बड़ी मेजबानी होगी। आपने बताया कि 2010 में कॉमनवेल्थ भारत इसी दिल्ली में आयोजित कर चुका है। इसके अलावा 1951 और 1982 दो एशियाड भारत के नाम है, और 51 का एशियाड तो ऐसे था कि भारत से ही शुरुआत हुई थी
जी।
तो दोनों एशियाड दिल्ली में हुए, कॉमनवेल्थ भी दिल्ली में हुए। अब ये पहला ऐसा मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट इंटरनेशनल होगा जो दिल्ली से बाहर होगा, और जाहिर सी बात है जिस तरह की तैयारी अहमदाबाद में चल रही है, हालांकि भुवनेश्वर भी एक नाम आया था शुरू में, लेकिन मान के ये चला जाए कि अहमदाबाद में ज्यादा तैयारी चल रही है, और जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो नया स्टेडियम क्रिकेट का बना है, वहां का पूरा परिसर जो इलाका है वो सरदार पटेल खेल परिसर के नाम से उसको नामित किया गया है, और उसमें सारी तैयारियां चल रही हैं।
तो बिल्कुल, तो करते हैं कि लगता है कि जो खेल प्रेमी है उनको बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम स्पोर्ट्स के हिसाब से देखें तो जो भारत में जो आने वाले बडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी।
जी हाँ बिल्कुल, जब बड़ा आयोजन आपके देश में होता है, हमने देखा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भारत में हुआ था
जी,
तो उसमें काफी फायदा हुआ जो जूनियर प्लेयर्स थे, तो इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी निकलते हैं, अगर आयोजन होता है तो खिलाड़ी भी निकलते हैं, और 2010 के बाद भी कई खिलाड़ी यहां से निकले थे। काफी शानदार राष्ट्रमंडल खेल आपको भी याद होगा 2010 वाला,
आज तक स्पोर्ट्स कैन में हमने उसको पूरी हर दिन कवर भी किया था, और अच्छी यादें सीडब्ल्यूजी में, भारत का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ग्लासगो से अच्छी,
शायद बहुत कम देश की कोई राजधानी ऐसी होगी जहां राजधानी के शहर में दो खेल गांव है, एक 1982 एशियाड का खेल गांव है और एक 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का।
बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया के एक दिवसीय क्रिकेट प्रारूप के कप्तान रोहित शर्मा को ताजा आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। रैंकिंग में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहले स्थान पर कायम हैं, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव दूसरे स्थान पर हैं। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट।
रोहित शर्मा पुरुषों की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में 756 अंक के साथ पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा रैंकिंग में रोहित को एक पायदान का फायदा मिला, हालांकि उन्होंने 2025 आईपीएल सीजन के बाद से कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला है। शुभमन गिल शीर्ष पर बरकरार है, वहीं बाबर आजम तीसरे और विराट कोहली चौथे स्थान पर है। रैंकिंग में यह बढ़त ऐसे समय पर आई है जब रोहित और विराट के संन्यास की खबरें सामने आ रही है। रोहित और कोहली ने आखिरी बार ओडीआई मैच ट्रॉफी के दौरान खेला था। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, तो रोहित शर्मा को एक स्थान का फायदा मिला है, और एक ये रैंकिंग ऐसे समय पे आई है जबकि अगर हम, जैसा कि रिपोर्ट में भी था कि रोहित और कोहली दोनों के बारे में ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद वो संन्यास भी ले सकते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और देखिए एक पायदान का फायदा इसलिए रोहित शर्मा को हुआ कि उन्होंने खेला तो है नहीं
जी,
लेकिन बाबर आजम चूंकि लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी जो वर्तमान में जो श्रृंखला थी उसमें भी उनका प्रदर्शन खराब रहा है, तो उसका फायदा रोहित शर्मा को मिल गया। और अगर इसी तरह का खराब परफॉर्मेंस बाबर आजम का जारी रहा तो हो सकता है विराट कोहली भी उनको पीछे छोड़ दें
जी।
तो कभी कभी आपका भविष्य दूसरे के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है, तो इस रैंकिंग में ऐसा ही हुआ है रोहित शर्मा के साथ, और मुझे लगता है कि विराट कोहली भी जल्द ही आगे निकल जाएंगे जब अगली रैंकिंग आएगी। तो
भारत के गुलवीर सिंह ने बुडापेस्ट में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ की गैर ओलंपिक स्पर्धा में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए पांचवें स्थान पर रहे। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
बुडापेस्ट में गुलवीर ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए 7:34.49 का समय लेकर अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गुलवीर यूरोप में अपनी पहली ट्रैक रेस में भाग ले रहे थे। ये विश्व एथलेटिक्स की कॉन्टिनेंटल टूर स्वर्ण स्तर की प्रतियोगिता है। गुलवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर और 10000 मीटर में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वो 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में मौजूदा एशियाई चैंपियन भी हैं। गुलवीर सिंह 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। उम्मीद है कि गुलवीर आने वाली प्रतियोगिताओं में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, अब जो शबाब नजर रहेगी वो 13 से 21 सितंबर तक जो टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें जो है सबकी नजर गुलवीर पर होगी। इस प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपनी स्पर्धा है जिसमें वो दौड़ते हैं इस पर एक तरह से उनका आधिपत्य कायम हो गया है। देखिए इसमें भी अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और एशियन चैंपियन भी रहे हैं और क्वालिफिकेशन मार्क भी उन्होंने हासिल कर लिया है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगली प्रतियोगिता है उस पर सबकी नजर रहेगी और देखना काफी दिलचस्प होगा।
बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 से 31 अगस्त के बीच पेरिस में आयोजित की जाएगी। भारत ने अब तक BWF विश्व चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीते हैं। साल 2011 से अब तक हर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कम से कम एक पदक जीता है। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट।
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के ड्रॉ आज घोषित किए गए हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को पहले ही दौर में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनका मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के खिलाड़ी शी यूची से होगा। शी यूची ने इस सीजन में 3 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 खिताब अपने नाम किए हैं। इसके साथ लक्ष्य सेन अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीतने के प्रबल दावेदार बन गए हैं। 2021 के कांस्य पदक विजेता और पेरिस 2024 ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाले लक्ष्य सेन भी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों बीच अब तक कुल 4 मुकाबले हुए हैं, जिनमें शी यूची ने 3 जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता HS प्रणय भी अपना अभियान फिनलैंड के जोआकिम ऑलड्रॉफ के साथ शुरू करेंगे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
जी हाँ शबाब, जो पहला मुकाबला है वो लक्ष्य सेन का शी यूची से हो रहा है और शीर्ष वरीयता प्राप्त है वो। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के तौर पर?
देखिए, भारतीय खिलाड़ियों का जो अतीत रहा है वो बहुत अच्छा ही नहीं रहा। एक ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अगर देखा जाए, या ज्यादा से ज्यादा जो भी एक खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस खिलाड़ी की बात की,
तो
पहला ही अगर मुकाबला आपका इतने बड़े खिलाड़ी से अगर हो रहा है तो आप निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि चिंता की बात उनके लिए होगी। लेकिन हाल के दिनों में जो 2025 में जो कुछ टूर्नामेंट उन्होंने खेले हैं लक्ष्य सेन ने, उसमें जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है तो उनसे निश्चित रूप से काफी उम्मीदें हैं। चिराग शेट्टी को आप पहले राउंड में अभी खबर आई है कि बाई मिल चुका है, तो ये उनके लिए राहत की बात है।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। फिलहाल उनके साथ 2 साल का अनुबंध किया गया है। राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त होने से पहले खालिद जमील जमशेदपुर FC के मुख्य कोच रह चुके हैं, तो अब फिलहाल भारतीय जो हमारी जो नेशनल टीम है उसको एक नया कोच मिला है। किस तरह से देखते हैं इस परिवर्तन को?
मुझे लगता है कई दशक के बाद ऐसा हुआ है कि भारत को एक देसी कोच मिला है। भारतीय फुटबॉल को ज्यादातर विदेशी कोच अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे, लेकिन खालिद ने जिस तरह से जमशेदपुर फुटबॉल में, जहां के टाटा फुटबॉल एकेडमी भी है, बहुत पहले से कार्यरत है, वहां पर कई खिलाड़ी फुटबॉल के निकले हैं काफी दिनों से, सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो निर्णय लिया है और जिस तरह का उनका पिछला प्रदर्शन रहा है कोच के नाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और वैसे भी भारतीय फुटबॉल डोमेस्टिक लेवल पर काफी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, कुछ टूर्नामेंट बंद हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कोच बनने के बाद उन्होंने पहले कही है कि जो भारत में जो क्लब के टूर्नामेंट थे जो कि इस समय काम नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जो लीग सब शुरू हुई उससे खिलाड़ी जरूर निकले हैं, लेकिन क्लब टूर्नामेंट जैसे हम देखते थे मोहन बागान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, इन टीमों के बीच डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब गोवा, इन टीमों के बीच जब मुकाबले होते थे तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती थी कि आम फुटबॉल प्रेमियों का लगाव अपने अपने क्लब के लिए होता था और इससे कुछ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए निकल कर आते थे, तो उसे शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और चलते चलते टेनिस पर नजर डालते हैं। सिनसिनाटी ओपन में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के हमद मेडवेडोविक को 6-4, 6-4 से हराकर 2025 की अपनी 50वीं जीत दर्ज की है। अल्कराज ने इस जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करी। मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर ने कोलंबिया के डेनियल गालन को सिर्फ 59 मिनट में 6-1, 6-1 से हराया। अगला मैच उनका फ्रांस के आर्थर डिंडर कनेक से होगा। तो अल्कराज का जो प्रदर्शन है वो बेदस्तूर जारी है।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शबाब, जो आज हमने जो खबरें कवर की तो हमने कोशिश करी, और सबसे बड़ी चीज जो इसमें सामने आई जो CWG गेम्स की खबर थी उसमें हमारे श्रोताओं को काफी इंटरेस्ट आया होगा।
बिल्कुल।
और इस तमाम खेल खबरों पर
भारत में होने जा रहा है।
जी बिल्कुल। तो तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को। शुभ रात्रि, नमस्कार।